दिल्ली में उनकी सेवा की एक बहुत ही तुच्छ सेवक के भाव थे। एक बार की बात है कि शिवास पंडित के घर में महाप्रभु सभी को आशीर्वाद दे रहे थे केवल मुकुंद के अलावा, तो महाप्रभु ने उनको नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्होंने भक्ति देवी का के प्रति अपराध किया था, क्योंकि मुकुंद ने भक्ति देवी का को कर्म ज्ञान और यहां तक कि मायावाद सिद्धांत के बराबर बताकर ये बताया कि सभी इस प्रकार के जो अलग अलग मार्ग के जो लोग हैं और भक्त जो हैं वो एक बराबर हैं। तो यहां पर मुकुंद जी की तुलना जो है बिल्कुल एक गिरगिट से की गई है, जो कि भक्तों के बीच में जब रहता है तो भक्ति का बखान करता है, और जब कर्मियों या अभक्तों के बीच में रहता है तो व्यर्थ के भौतिक कार्यकलाप और भौतिक विषय वस्तुओं पर चर्चा करके उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मायावादियों के साथ बैठ के वो मायावाद दर्शन की भी चर्चा किया करते थे। तो मुकुंद जी ने तब अपने सजा के रूप में आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उन्होंने भक्ति देवी के प्रति एक बहुत गहरा अपराध किया था। तो चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने पूछा कि क्या भविष्य में कभी उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। महाप्रभु ने कहा हाँ जरूर होगी, 10 लाख जन्मों के बाद आपको ये कृपा प्राप्त होगी। तो ये जान के कि 10 लाख जन्मों के बाद अंततः उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, मुकुंद बहुत आनंद पूर्वक जो है उछलने लगे, लंफन करने लगे और जोर जोर से पुकारने लगे कि केवल दस लाख जन। सिर्फ ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, और वो देखते हैं कि मुकुंद के अंदर भक्तों का एक गुण यानी कि बहुत दृढ़ निश्चय है, और महाप्रभु उनके दृढ़ निश्चय को देखते हुए मुकुंद को आशीर्वाद देते हैं कि केवल तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा निश्चय देखकर जो है तुम्हारे सारे अपराध जो है अभी क्षमा हो गए। कृष्ण लीला में उनका नाम मधुकांत है। मधुकांत का मतलब वो व्यक्ति मधुकंठ का मतलब वो व्यक्ति जिनकी आवाज जो है वो बहुत ही मधुर हो, बिल्कुल शहद जैसे, यानी कि वो बहुत ही प्रखर गायक हैं। तो उनकी समाधि वृंदावन में 64 समाधि क्षेत्र में जो है स्थित है। श्रील मुकुंद दत्त त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की तो चैतन्य चेतामृत की मध्य लीला में के 11वें अध्याय में जो है स्नान यात्रा का एक संक्षिप्त वर्णन आता है, जब महाप्रभु दो बार वर्णन आता है ऐसे, पर मतलब शुरुआत में जब मध्य लीला में पूरा का पूरा मध्य लीला के जितने भी मुख्य प्रमुख लीलाएं हैं उनको जो है संक्षेप में कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, और उसके बाद यहां पर 11वें अध्याय में तो जहां पे बेड़ा कीर्तन की लीलाएं जो है दी गई है, तो वहां पर स्नान यात्रा के बारे में संक्षिप्त वर्णन मिलता है। तो ये श्लोक प्रयार संख्या 60 से है और 62वां प्रयार जो है वो हमने बोर्ड पे लिखा है, तो हम पहले के प्रयार पढ़ते हैं, आप सुनिए। स्नान यात्रा का बिहा पूछिल भटेरे, भट्ट कहे तीन दिन आछे जत्रा रे, राजा रे प्रभो दिया भट्ट गेलो निजालय, स्नान यात्रा दीन प्रभु आनंद हृदय। यानी कि शब्दार्थ एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद के जन। तो राजा प्रताप रुद्र ने सारो भट्टाचार्य से पूछा कि स्नान यात्रा जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा कब आने वाली है। तो सारो भट्टाचार्य जी ने उत्तर दिया कि बस केवल 3 दिन ही शेष रह गए हैं इस समारोह को। तो ये सुनने के बाद राजा प्रताप रुद्र बहुत उत्साहित हुए और सार्वभौम भट्टाचार्य तत्पश्चात अपने घर को लौट गए। जिस दिन जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का आयोजन किया गया, महाप्रभु का चित्त अति प्रसन्न था। तो अब 62वां प्यार है, आप हमारे पीछे पीछे बोलिए। स्नान यात्रा देखी प्रभुर होइल बड़ शोक, स्नान यात्रा देखि प्रभुर होइल बड़ शोक, ईश्वरेर अनवसरे पाइल बड़ दुख, ईश्वरेर अनवसरे पाइल बड़ दुख, स्नान यात्रा देखि प्रभुर होइल बड़ शोक, ऐश्वरे नान बसारे पाइल बड़ दुख, स्नान यात्रा देखि प्रभुर होइल बड़ शोक, ऐश्वरे नान बसारे पाइल बड़ दुख। इस प्रकार से जगन्नाथ जी का स्नान महोत्सव देखने के पश्चात महाप्रभु अति प्रसन्न हुए, किंतु जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के बाद अनवसर पर जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु बहुत ही व्याकुल हो उठे, क्योंकि अब वो उनका दर्शन न कर पा रहे थे। तात्पर्य प्रपद्धा है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के स्नान महोत्सव के बाद, जो कि रथयात्रा से तकरीबन 2 हफ्ते पूर्व ही होता है, 15 दिन पूर्व होता है, भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य शरीर को दोबारा से उस पर रंग किया जाता है और तकरीबन 15 दिन इस कार्य को लग जाते हैं। इसीलिए इस कार्य को इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। तो कई ऐसे भक्तगण हैं जो कि प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन जगन्नाथ मंदिर में करने के लिए जाया करते हैं, और उनके लिए इस तरीके से भगवान जगन्नाथ जी का जो अवगमन है वो बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ जी का विरह इसी प्रकार से उन्होंने ये इसको इस तरीके से महसूस किया, इस विरह को। तो अगले प्यार में इस प्रकार से बता रहे हैं। गोपी भाव विरहेर प्रभु बैकुल होइया, आलल नाथ गेलो प्रभु सवारे छड़िया। क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ जी के विरह से महाप्रभु अति व्याकुल हो उठे, तो इसीलिए बिल्कुल गोपियों के भाव में और वो गोपियों के विरह के भाव में वो सबका संग छोड़कर आलालनाथ की तरफ जो है उन्होंने प्रयाण किया। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि स्नान यात्रा महोत्सव, वैसे तो मतलब स्नान यात्रा को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे भगवान का अभिषेक होता है, श्री राधा राधिकरण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ सुब्रमण्य की। तो ये स्नान यात्रा बड़ा विचित्र है, ये जगन्नाथ जी के जन्मोत्सव पे जो है, जन्मोत्सव के अवसर पर जो है स्नान यात्रा मनाई जाती है। तो जन्मदिन के दिन जो है जैसे अभिषेक किया जाता है, तो अभिषेक तो आप लोग कई बार होता हम सुन लेते तो एकदम से अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, भगवान जगन्नाथ जी के जन्मोत्सव। अब भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण है, कृष्ण का जन्मोत्सव कब होता है, तो ये क्या है फिर? क्या है जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव? कई डिवोटीज इमीडिएटली नोटबुक में लिखने लग गए, जैसे कि जगन्नाथ जी कोई दूसरे भगवान है कृष्ण से, तो सबको पता है कि कृष्ण की जन्माष्टमी होती है। भगवान का जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव का मतलब क्या है कि जिस दिन जगन्नाथ जी धरातल पर जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए, तो ये उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस स्पेसिफिक फॉर्म को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऐसी सेलिब्रेशन को स्नान यात्रा कहते हैं। ये फर्क है बस। और ये ज्येष्ठ मास में जो है, बिल्कुल जैसे ये भी महीना चल रहा है और पूर्णिमा, तो इसमें तो ये मतलब कि जब ब्रह्मा जी ने गुंडीचा में जो है जगन्नाथ बलि सुभद्रा भावना की स्थापना की थी, बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में महाराज इंद्रदमन के बुलाने पे, उनके आह्वान पे, तो वो जो अवसर था उसको स्नान यात्रा के नाम से जो है जाना जाता है। तो तब जो है इस तरीके से, तो हर साल अब जब ये मतलब जगन्नाथ जी के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके मुताबिक ये पहला फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद फिर रथ यात्रा, फिर धीरे धीरे और फेस्टिवल, फिर आखिरी, फिर चंदन यात्रा आखिरी फेस्टिवल माना जाता है। तो कहते टोटल 12 बड़े बड़े उत्सव होते हैं जगन्नाथ जी के लिए, तो ये पहला है और चंदन यात्रा 12वां होता है। तो इसलिए चंदन यात्रा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, लंबा मतलब खींचता है। तो ये मतलब क्रम है। वैसे तो कोई कह सकता है कि पूरा साल जब ऐसे सर्कुलर घूम रहा था कौन सा पहले और कौन सा बाद में, पर क्योंकि भगवान के रीति इंस्टॉलेशन के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट फेस्टिवल है, इसलिए स्नान यात्रा जो है पहला फेस्टिवल जो है माना जाता है। और फिर स्नान यात्रा जैसे हम लोग कई लोग जानते भी हैं हम लोग कि स्नान यात्रा एक बहुत विचित्र उत्सव है कि स्नान यात्रा के बाद जो है यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ पे मध्य लीला के पहले अध्याय के 122 प्यार के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे शब्द अनवसर इस्तेमाल किया गया, तो अनवसर का मतलब ही है कि जब भगवान जगन्नाथ जी को जो है इसके बाद अभी उनके दर्शन नहीं प्राप्त होंगे, तो इसलिए अनवसर। तो स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी ऐसा प्रतीत होता है कि वो बीमार पड़ गए, तो प्रभुपाद ने यहाँ पे ऐसा बोला है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये मतलब स्थानीय मान्यता है कि इस तरीके से कि हालांकि गौरगोविंद महाराज बताते हैं कि ऐसा कोई शास्त्रिक इसका उदाहरण, मतलब शास्त्र से ऐसा श्लोक उद्धृत करना शायद मुश्किल हो जाएगा कि भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं स्नान के बाद, तो ये भाव है। अदरवाइज शास्त्रिक कोई श्लोक जो है एटलीस्ट गौरगोविंद महाराज बताते हैं कि उद्धृत करना, क्योंकि स्कंद पुराण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हालांकि पूरा का पूरा जगन्नाथ जी का आविर्भाव का जो पूरा प्रसंग है स्कंद पुराण में काफी विस्तार से वर्णन है, पर बीमार पड़ना नहीं बताया भगवान को। तो पर भक्तों का भाव है ये इस तरीके से। दरअसल यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद बता रहे हैं, दरअसल इस जो इस अवसर पे भगवान के जो देव का जो है उसका जो है पुनर् जो है उस पर जो है रंग किया जाता है, यानी इसको इस प्रणाली को या इस पूरे के पूरे प्रथा को नव यौवन कहते हैं, कि भगवान का जो शरीर है उसको दोबारा से, क्योंकि जैसे दारू ब्रह्म है भगवान मतलब लकड़ी का शरीर है, तो इसलिए लकड़ी के ऊपर जो है बहुत पतली सी परत कपड़े की लगाई जाती है, तो वो कपड़ा बदला जाता है निकाल के, और मेडिसिनल हर्ब्स लगाए जाते हैं तो उस वक्त, तो और भोग भी विशेष लगता है उस वक्त, क्योंकि ऐसा मतलब भाव इस तरीके से होता है कि भगवान बीमार है, तो बीमार व्यक्ति को तो कैसे थोड़ा अलग खिलाते हैं ना, तो फिर थोड़ा अलग खिलाया जाता है जगन्नाथ जी को, तो 15 दिन तक। तो इवन ये भी यहाँ भी ऐसा भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में जो ऐसा बताते हैं कि इस स्नान यात्रा के दौरान जो जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना कि दूसरा प्रसाद होता है बाकी का। वजह क्या है वजह बताई जाती है कि क्योंकि जगन्नाथ जी बीमार हैं तो लक्ष्मी जी जो है वो बहुत डिप्रेस हो जाती हैं, तो इसलिए जो है वो पूरे मन से जो है प्रसाद उस तरीके से नहीं बनाती, तो इसलिए तो प्रसाद का टेस्ट जो है थोड़ा सा फीका लगता है ऐसा बताया जाता है। तो ये सब अलग अलग मान्यताएं हैं इस तरीके से। और फिर मतलब इसके बाद जब 15 दिन इस तरीके से 15 दिन में जो है भगवान का नवयौवन सारा पेंट होके सब करा के, फिर उसके बाद जो है जब भगवान के फाइनली दर्शन होते हैं तो फिर उस उत्सव को नेत्रोत्सव कहा जाता है। नवयौवन उत्सव, नेत्रोत्सव, 15 दिन बाद फाइनली इस तरीके से। और भगवान स्नान के बाद, स्नान के फौरन बाद जो भगवान को फिर मतलब वेश पहनाते हैं, तो वो वेश हाथी वेश पहनाते हैं। तो ये सब मतलब वहाँ के वैरायटीज हैं, मतलब जगन्नाथ जी के सेवा करने की जो है ये तरीके हैं, जिस तरीके से धीरे एक के बाद एक चीजें मतलब आती जाती हैं, फिर उसके एक दो दिन बाद फिर फाइनली जैसे हम जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा आ जाती है। तो ये चीजें मतलब कई बार डिवोटीज मतलब यही हमारे कॉज ऑफ सेलिब्रेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कि भगवान का स्नान, भगवान का आगमन, इवन भगवान का बीमार पड़ना इज ए सेलिब्रेशन। तो बिकॉज जैसे प्रभुपाद बताते हैं एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट के कई एग्जांपल्स जैसे प्रभुपाद ने कृष्ण बुक में मिलता है कि भगवान ने रन छोड़ा तभी भी भगवान एब्सोल्यूट है, तभी भी उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से भगवान बीमार पड़ते हैं उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो भगवान जब बीमार पड़ते हैं तो वहां पे जो जगन्नाथपुरी में उनको फल खिलाया जाता है और पानी पिलाया जाता है। पानी में 10 प्रकार के अलग अलग औषधियां होती हैं और साथ ही साथ जो है हल्का सा मतलब मक्खन टाइप ऑफ चीज, तो ये हल्का सा मिलाया जाता है ताकि दवाई खा सके। तो इस टाइप से जो है करते हैं और बताते हैं कि वहां के जो मतलब राजवैद्य होते हैं तो 15 दिन तक जो भगवान के लाज राजवैद्य करते हैं। तो इस प्रकार का ट्रेडिशन है और इस तरीके से भगवान जो है भगवान के भक्त जो है भगवान का ये अवसर जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। तो और बाहर के लोगों के लिए ऑब्वियसली मतलब दर्शन खुले नहीं होते, तो 15 दिन, तो इसीलिए महाप्रभु भी जब क्योंकि दर्शन नहीं खुले थे तो इस विरह भाव में जो है कि महाप्रभु कि मैं भगवान का दर्शन नहीं करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा। तो देन लाइक तो इन द मूड ऑफ द गोपीज बिल्कुल इस तरीके से, तो राधा रानी के भाव में जो है महाप्रभु फिर अलारनाथ चले आते हैं। तो ये फिर अलारनाथ का फिर एक सिलसिला जो है 15 दिन का महाप्रभु के वहां रहने का, वहां की लीलाओं का, तो फिर वो चल पड़ता है। तो ये हालांकि एक हम एक ये सेंटिमेंट देख सकते हैं कि भगवान बीमार पड़े हैं और भगवान का इलाज हो रहा है और फिर उसके बाद तो भगवान का स्नान कराना, तो ऑल दिस थिंग्स, ये जो सारा ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये जो सारे अलग अलग कार्यकलाप हैं, इसका जो स्तर है, इसके पीछे का जो भाव है, वो जनरली जो है रागानुगा भक्ति के स्तर पे जो है ये सब चीजें आती हैं कि भगवान का बीमार पड़ना हो ये सब। नहीं तो अगर कोई स्ट्रिक्ट सेंस में देखे, मतलब अगर आप वैदिक शास्त्रों से हटके अगर आप और भी किसी मतलब दूसरे शास्त्र जो कि मतलब ठीक है किसी प्रकार के शास्त्र तो हैं, वो चाहे वो आप बाइबल लें चाहे वो कुरान लें, तो वहां पे ऐसा कोई मेंशन मिलेगा नहीं, राधर वो बहुत भौचक के रह जाएंगे ये सुनकर कि भगवान बीमार पड़ गए ना, भगवान का इलाज होता है फिर भगवान को स्नान कराया जाता है, समथिंग वेरी वेरी ऑकवर्ड, मतलब बहुत लोगों के लिए बहुत अटपटा जो है ये एक विषय वस्तु है। तो पर इसको इसीलिए देखना इनका इसको किस तरीके से लेना चाहिए, तो ये भी इसकी भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, नहीं तो अदरवाइज इन चीजों को बहुत सस्ता और बहुत मनमाने तरीके से ले लिया जा सकता है। जैसे हम पहले एक बार चर्चा भी कर रहे थे कि नहीं तो भगवान के साथ कैजुअल रहने का जो एक प्राकृतिक भक्त के अंदर जो है स्वाभाविक एक वृत्ति होती है कि भगवान को जो बहुत कैजुअली ले। जैसे कई बार भक्त लोग जो है बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में, बहुत ही बिल्कुल ही प्रारंभिक अवस्था में जब भक्ति ठीक से अंकुरित भी नहीं हुई होती है, तब इस प्रकार के कई बार जो है लोग भाव प्रकट करते हैं कि हम भगवान से, आज हमने भगवान से लड़ाई कर ली। ठीक है, दैट मे बी इनोसेंस, बट कंटिन्यूएशन ऑफ दैट काइंड ऑफ इनोसेंस इज साइन ऑफ इग्नोरेंस एक्चुअली। कुछ देर तक तो वो इनोसेंस भगवान बर्दाश्त करेंगे, पर वो चीज़ जो है लंबे समय तक चलेगा तो वो जो है वो फिर मासूमियत नहीं, जहालत कहलाती है। तो ये डिफरेंस है एक्चुअली। तो ये ट्रेनिंग से जो है, प्रशिक्षण से जो है, इस चीज़ को हम नियंत्रित कर सकते हैं, और नियंत्रित करने के बाद, नियमों का सही रूप से पालन करने के बाद हमारे पास अब जो भाव की उत्पत्ति होगी वो भावुकता नहीं होगी, वो भगवान के लिए भावनाएं होंगी। तो ये एक डिफरेंस है। इसीलिए ये सब सेलिब्रेशंस के पीछे उसके भाव को समझना और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को समझ के अपने आप को उस भाव के हिसाब से एडजस्ट करना, ये साधक का कर्तव्य है। तो साधक के भाव के हिसाब से भगवान का भाव एडजस्ट नहीं होगा, भगवान के भाव के हिसाब से साधक को और साधक के स्तर को देखते हुए उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को जो है व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ये मतलब इन इस प्रकार के जो उत्सव है इनमें ये सब चीजें जरूरी हैं, मतलब ये करना। तो जैसे कई बार भक्तों में इस प्रकार से, भक्तों के समाज में भी इस प्रकार से चीजें देखी जाती हैं कि क्योंकि भक्त लोग जब तक पूरी तरीके से, इसका क्या सबूत है कि कौन इस भाव का, इस भाव में भगवान को सही रूप से पूज सकता है, क्योंकि अगर ये भाव शास्त्र में दिया गया है या चलता है, जैसे ये स्नान यात्रा है, टोटली इस पे बेस्ड है, टोटली बेस्ड ऑन सेंटीमेंट ऑफ एफेक्शन, एफेक्शनेट सेंटीमेंट्स भगवान के लिए, कि तो आदर का बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम के भाव से जो है ये चीज इस तरीके से कराई जा रही है, तो कौन इसका अधिकारी है, क्या हम इसके अधिकारी हैं अभी इस स्तर पे? तो जैसे अभी हमने मुकुंदन जी के तिरुभाव दिवस पे उनके चरित्र में पढ़ा कि ऐसा भक्त जिसके अंदर अभी भी कर्म, ज्ञान, योग, मायावाद इसका प्रभाव है और काफी प्रभाव है, तो वो इस प्रकार के दिव्य भावों को सही रूप से समझने में सफल नहीं हो सकता। मसलन एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कई बार भक्त लोग इस प्रकार से पूछते हैं, अक्सर ये चीज आती है, थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता है ये मसला, परंतु इससे हम अपना स्तर जो है उसको चेक कर सकते हैं। अक्सर कई बार कुछ महीने या घर में कुछ प्रकार के कुछ ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि घर में किसी की मृत्यु हो गई हो या किसी का जन्म हुआ हो या श्राद्ध का महीना आ गया हो, तो ऐसे समय में या कोई ग्रहण लग गया हो, तो इन सब सूरतों में एक ही शब्द कॉमन होता है, तो बताना चाहेगा क्या होता है जिसके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं, भक्तों के समाज में पूछा जाता है। हाँ वो तो, पर वो समय, उस समय को क्या कहते हैं? सूतक। ठीक बात है, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की है, भागवत पुराण के 18,000 श्लोकों में मेरे को सूतक शब्द नहीं मिला, भागवत गीता में भी कहीं सूतक शब्द का वर्णन नहीं होता। तो ये सूतक जो है बेसिकली कर्मकांडी प्रणाली है, पर देखा जाता है अच्छे अच्छे भक्त भी जो है बहुत जल्दी इसके चपेट में आ जाते हैं। तो इससे हमारी कर्मकांडी मानसिकता निकल के आती है, देन वी आर एक्सपोज्ड। उस सूतक के दौरान क्या क्या होता है, कई लोग पूछते हैं हमारे घर में सूतक है, भगवान को भोग लगा सकते हैं? कुछ लोग और पूछते हैं, जब भगवान बेचारे यहां पे भोग लगा ही नहीं सकते, भगवान को भोग लगा ही नहीं सकते, तो भगवान का यहां पे क्या काम, क्या भगवान को किसी और के घर पे भेज सकते हैं, भगवान को दरकिनार कर दिया जाए, तो इससे जो है अपना स्तर पता लगता है। तो ऐसी मानसिकता के अंतग्रस्त लोग जो हैं भगवान की स्नान यात्रा और भगवान के साथ लड़ने का जो है अधिकार नहीं रखते, तो ये अधिकार इससे प्रतीत होता है, इससे प्रतीत होता है। तो ये सब चीजें कर्मकांडियों विचारधारा के अंदर है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 11 श्लोक में बता रहे हैं जो द वाइस लैमेंट नाइदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेथ। इसका मतलब बेसिकली वो व्यक्ति जो है मूर्ख समझा जाता है। तो और उस अपने गम में भगवान को भी साथ में शामिल कर लेना कि चलिए जी हमारे घर में जो है हम भी गमगीन है तो भगवान भी गमगीन है, भगवान को भी उपवास करना चाहिए। तो ये सब विचारधारा ये कर्म कांड है, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से जो है ये संस्कार जो है हमारे अंदर छपे हुए हैं और ये उन समय पर निकल उसी समय पर हमारी परीक्षा होती। और इन सब का कर्मकांडियों रीति रिवाजों का नियमों का जो कि शास्त्रिक है, धर्मशास्त्र में इनका वर्णन है, पर इसके ऊपर सिर्फ एक और केवल एक चीज इसको हमको इससे पार लिया जा सकता है, वो है अटूट श्रद्धा। और वो अटूट श्रद्धा का मतलब ही है कि जब हम हमारे दिमाग में जो है इस प्रकार के जो धर्मशास्त्र के जो सिद्धांत है ये हमारे ऊपर प्रभाव डालना बंद करें, तब तक, जब तक ऐसा नहीं है तब तक ऐसा हम उसके अधिकारी नहीं। तो ये कुछ इस प्रकार के ऐसे चीजें होती हैं जिसमें हम अपने आप को जो है जांच सकते हैं, अपने आप को नाप सकते हैं कि हमारी श्रद्धा कितनी है। तो इसीलिए भगवान के साथ प्रेमयी संबंध स्थापित करने के लिए इसलिए महाप्रभु के जो भक्तगण है तो वो महाप्रभु की आराधना दास्य भाव में करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दास्य भाव में सबसे पहले भगवान का दासत्व स्वीकार करना, इसकी ट्रेनिंग, इसका प्रशिक्षण लेना, ये महाप्रभु सबसे पहले हमें जो है सिखाने आए थे। फर्स्ट बी सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। भगवान क्या है, श्री अधम जनार बंधु है भगवान, गुरु अधम जनार बंधु है भगवान का नाम दीन बंधु है। भगवान जो है सभी जीवों के जो है दोस्त हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, सखा हैं, परंतु हमारे दूषित अवस्था में हम भगवान के सखा नहीं बन सकते, हम भगवान के दास हैं। इवन दो कृष्णा मे बी फ्रेंडली टू अस बट वी कैन नॉट ट्रीट कृष्णा एज अवर फ्रेंड ऑन एन इक्वल प्लेटफॉर्म व्हाइल बीइंग ऑन द कंडीशन स्टेट, जैसे कि ये है। तो ये बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना कैजुअल। तो इसीलिए भगवान की सेवा जो है पहले सशंब भाव से होती और फिर विशंब भाव से होती। सशंब विशंब 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 मीन्स विदाउट इनिबिशन और रेवरेंस, मतलब कि ना डर के, मतलब जैसे जो प्रॉपरली भक्ति। इसीलिए हम लोग अगर जब तक हम लोग ये रूप गोस्वामी की इस परंपरा में नहीं आते हैं तो ये समझना बहुत मुश्किल होता है भक्ति चीज क्या है, क्योंकि आम तौर पर जो है भगवान के बारे में लोगों को बड़ी 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 भ्रांत धारणा है। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रचलित भाव है कि भगवान से डरना चाहिए, हर चलचित्र में, मूवीज में, आम रोजमर्रा की जिंदगी में लोग बोलते हैं भगवान से डरो। तो जो भगवान से डरेगा, जो जिससे डरेगा उससे प्यार तो नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल तय है। तो इसलिए गौड़ी वैष्णव सिद्धांत बिल्कुल अलग धरातल पर चलते हैं। तो ये कर्मकांडीय मानसिकता से या ज्ञान मार्ग के मानसिकता से दूषित या इस प्रकार के अलग अलग सत्व रजो तमो गुण के प्रभाव से दूषित जो भक्ति जो मिश्रित भक्ति कहलाती है उसके तहत इस प्रकार के कंसेप्ट जो है ये चलते हैं। तो ये भगवान के साथ जो है कोई मुख्य रस नहीं है। तो ये किस लिए है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसके भगवान को लेकर इस प्रकार के विचारधारा या धारणाएं हैं, वो व्यक्ति अभी स्तर पर नहीं है कि वो भगवान को अपने दोस्त के रूप में जो है स्वीकार करे और उसी तरीके से जो आदान प्रदान करे। तो ये दीज आर सम ऑफ द ये लिटमस टेस्ट है बेसिकली, जैसे हम अपने आप को जो है नाप सकते हैं कि हम किस स्तर पर। आपने अपने 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 मुरली कृष्ण से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, शेयर करूंगा और मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उन्होंने बताया कि हम जब भगवान से दर्शन करने आते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम भगवान को कैसे लेते हैं, हम भगवान के साथ कितने कैजुअल होते हैं। बता रहे थे, कहते कि मैंने भी बाद में उसके बाद ध्यान दिया, मैंने देखा मैं भी ऐसे ये गलती करता था। उन्होंने बताया कि भगवान से जब दर्शन करने आते हैं इससे रेलिंग होती है, कई लोग इस रेलिंग में ऐसे खड़े होते हैं। तो इस तरीके से खड़े होना जो है दास का काम तो नहीं है। जो भगवान का सेवक होगा, जो सेवक होगा वो मालिक के सामने ऐसे खड़ा नहीं होगा, वो ऐसे खड़ा होगा कि हाँ हम सेवा के लिए तैयार हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। तो इससे दीज ये सब सटल चीज है जिससे जो है ये पता चलता है कि हम अभी किस स्तर पे। तो हम जिस स्तर पे, क्योंकि हम अभी जिस स्तर पे हैं वो हमें जानना ज्यादा जरूरी है, तभी हम वो जो फासला है वो हम तय कर पाएंगे कि हम ये अभी यहां पे हैं, अभी यहां से हमें कहां जाना है, कितने दूर जाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ऑल दिस सेलिब्रेशन जो, हालांकि हमारे मंदिर में हालांकि जगन्नाथ जी के विग्रह हैं पर स्नान यात्रा जैसा बड़ा उत्सव हम नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल भी हमेशा नहीं हो पाता। और जगन्नाथपुरी में ये सेलिब्रेशन यूजुअली होता है, इसके बाहर कभी सुना नहीं था, तो अगर कहीं होता हो तो राजापुर में होता है, दे डू स्नान यात्रा सम प्लेस, मे बी इवन हाउस कास हू नोस, तो कई जगह पे हो सकता है करते हैं, और जहां पे संभव है इस तरीके से, क्योंकि इसका काफी बड़ा आयोजन करना पड़ता है। क्योंकि जगन्नाथ जी उसमें भी मतलब जो ये सेलिब्रेशन भी होती है, तो भगवान का स्नान जो है जगन्नाथ मतलब मंदिर के अंदर गर्भगृह में स्नान नहीं होता, तो बाहर लाया जाता है। तो बाहर लाके फिर उनका अलग सा एक कुआं है, उसी कुएं का पानी इस्तेमाल होता है, फिर स्नान होता है। तो उस तरह से भगवान बेसिकली मतलब बाहर पब्लिक पे आते हैं तो स्नान होता है। तो इस तरीके से आयोजन होता है। तो ये सारा आयोजन जो है इट्स ए मैटर ऑफ लाइक जुबिलेशन, मतलब कि आनंद, जो क्योंकि जो भक्ति है केवल आनंद का, तो इस तरीके से। परंतु उस आनंद के साथ ये अगर इस चीज का अगर ध्यान रहे कि हमारा हम कहां तक आनंद को उपभोग करने के अभी अधिकारी हैं, तो जो है मर्यादा का व्यतिक्रम नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि मर्यादा व्यतिक्रम ना हो, कि हमारी हम अपनी मर्यादा में रहते हुए जो है भगवान की सेवा करें, और अपनी मर्यादा में रहते हुए जो है अपनी मर्यादा में रहते हुए ही दरअसल हम जो है पूर्ण रूप से भगवान के साथ इस प्रेममयी आदान प्रदान का आनंद जो है उपभोग कर सकते हैं। तो दैट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दीज फेस्टिवल्स। तो यहीं पे समाप्त करेंगे, किसी को प्रश्न तो पूछ सकते हैं। स्ट्रेट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए जहां तक प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, जहां तक धामवासियों का सवाल है, धामवासियों के ऊपर जो हम इस प्रकार के नियम जो है ये लागू नहीं कर सकते, हम लागू नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि वो उसका क्या है, कैसा है, क्या है, वी कैन नॉट स्टिल जज, यू नो। जैसे आपने बताया कि रागानुग भक्ति का जो स्टेज है वो निष्ठा के बाद से शुरू होता है, ठीक बात है कि निष्ठा के बाद जो है व्यक्ति रागानुग भक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो पर ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति वो है जो अभी साधना करते हुए वहां तक आए हैं। पर धामवासी जो है कई सूरतों में, अधिकतर सूरतों में, या ऐसा मान के चलिए फॉर आवर ओन सेफ्टी ये मान के चलिए 100 out of 100 केस में जो है ये उस तैर को पार करने के इनाम ही ये है कि उनको धाम में जन्म मिले। that they have taken birth in that place is the proof that they have executed already. Actually, ये जो प्रश्न है एक तरह से ठीक है, practical purpose के लिए ठीक कि ठीक है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये सब practical चीजें हैं. But at the same time, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस बिना पर जो है हम धामवासी को जज नहीं कर सकते कि वो पैसे मांगते हैं या aggressive होते हैं, रूड होते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं. सो या दे कैन बी बिकॉज द लॉ डजंट अप्लाई ऑन देम. तो बेसिकली कई बार क्या होता है, ये जो उनको जो स्पेशल प्रिविलेज है वो हमें इसलिए दुखती है बिकॉज वी आर इन्फेक्टेड बाई एनवी, कि जो उनके पास अधिकार है वो मेरे पास क्यों नहीं है. आपके पास भी आ सकता है, आप अति मेहनत कर लीजिए, आपको कौन रोक रहा है. It's like that, you know, it's as simple as that. And so we don't, you know, like, and we cannot even imitate. हम उनकी नकल भी नहीं उतार सकते. मतलब नकल उतारने का इस, जैसे आपने बताया, इस प्रकार के कार्यों का नकल उतारने का अंजाम जो है तुरंत मिल जाएगा आपको. We'll be beaten with shoes. तो ये कुछ चीजें हैं. कौन है उन्होंने जैसे ब्राह्मण बनाया हुआ है तो कब खाता है, मतलब कोई भक्तों के लिए, यही तो कह रहा हूं, भक्तों के लिए लागू होते नहीं है, परंतु वो भक्त कितना भक्त है उससे पता चलता है. अगर वो इन सब चीजों से जो है उसी की मान्यता उसके लिए प्रधान है तो वो उतनी मात्रा में भक्त है. तो ये बात, तो ये कर्मकांड के नियम जो है केवल भक्ति से ही काटे जा सकते, परंतु उसका पीछे एक चीज है, आपको भक्त होना पड़ेगा. ना हम भक्ति करेंगे ना हम कर्मकांड करेंगे, ये नहीं चलेगा. हाँ वो सब चीजें, हाँ ठीक है, वो उनके लिए जो भक्त नहीं है, उनके लिए जो भक्त नहीं है उनके लिए वो कर्मकांड के धर्मशास्त्र के नियम जो है वो लागू होते, और जो भक्त है उनके लिए लागू नहीं होते. भक्त होना चाहिए, वैसे है भक्त जैसा दिखता हो वो भक्त नहीं है, तो भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते, लोगों को बेवकूफ बना सकते है ना, क्योंकि वो जो कर्मकांड है वो भी एक स्पेसिफिक प्रकार की तपस्या है. अगर 17 दिन तक आपको हविष्यान्न खाना है तो एक तपस्या है वो आपको सतगुण में लाने के लिए. तो जब हम जीव की लालसा की वजह से हैं, हम मैंने जो है रजोगुणी खाना भी खाना है और ये हविष्यान्न भी नहीं खाना, और तो जब मेरे को हविष्यान्न खाना है तो मैं भक्त हूं ना, तो तब मैं भक्त हूं, और जब मेरे को कोई तपस्या करनी है तो मैं, और जब मेरी मान्यताएं हैं, जब मेरी मान्यताएं मेरे को आड़े आती तो मैं भक्त नहीं हूं, तब मैं कर्मकांडी हूं, तो मैं क्या हूं. फर्स्ट वी शुड डिसाइड आवर वे, लाइक वी शुड नॉट बी रोमिंग इन एन आइडेंटिटी क्राइसिस, कि मेरी हैसियत जो है, मेरा रुतबा क्या है भगवान के नजरों में, क्या मैं भक्त हूं या मैं कर्मकांडी. एक तरफ हो जाए, मैं कर्मकांडी हूं तो हाँ शान से कहिए मैं कर्मकांडी हूं, मैं भक्त हूं तो फक्र से कहिए मैं भक्त हूं. ऐसा नहीं कभी मैं भक्त हूं कभी मैं कर्मकांडी हूं, तो ऐसे भगवान जो है दोनों तरफ से मारे जाएंगे. कर्मकांड का मतलब है आप कर्मकांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कर्मकांड करते करते आप सतगुण को प्राप्त हो सकते हैं, उच्च लोगों के हकीकत हो सकती है, और भक्ति भक्त हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र से जाकर भगवान के शिष्य को प्राप्त कर सकते हैं. पर अगर ये दोनों नहीं कर रहे हैं तो आपकी गति सिर्फ नरक है. आप इससे जो मसला था आज का, इससे प्रश्न पूछे और प्रश्न. दो प्रकार की सेवाएं होती हैं, रेवरेंशियल एंड फ्रेंडली. तो विश्वम सेवा जो है दैट इज लाइक, उसमें ऑ एंड रेवरेंस कम होता है और उसमें फ्रेंडली बिहेवियर भगवान के साथ ज्यादा होता है, दैट इज विश्वम. और शाश्रम का मतलब है इज विथ ड्यू ऑ एंड रेवरेंस, भगवान को भगवान मानते हुए बिल्कुल कि ये भगवान है, ये मेरे मतलब जैसे ड्यूटीज है, खिलौना नहीं है, तो इस तरीके से. और विषम का मतलब है कि जब आप रागानुगा प्लेटफॉर्म पे है तो आपको पता है ड्यूटीज की प्रायोरिटीज क्या है, ड्यूटीज के रिक्वायरमेंट्स क्या है. क्योंकि आपके साथ रेसिप्रोकेशन है, तो ये डिफरेंस है, आर्टिफिशियली नहीं। एक बार मैं याद है, आज से कई साल पहले एक वक्त ने बताया था, ऐसी मजाक कर रहे थे वो, तो उन्होंने बोला कि, हमने पूछा कि आपने भोग लगा दिया, कहते नहीं, मैं क्यों, भगवान खाएंगे नहीं, उन्हें किसने कहा, हम कह रहे हैं ठीक है आज भगवान को भूख नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक दैट, सो यू हैव टू बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। जी जी जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, कि भगवान का जो बीमार पड़े तो सबको दुख होना चाहिए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को भी दुख हुआ, पर भगवान के बीमार पड़ने का दुख नहीं हुआ, भगवान दर्शन देना बंद कर दिया इसका दुख। महाप्रभु जो है, जब भगवान बीमार पड़े हैं, पर महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे पे जो है सर पटक पटक के जो है नहीं रो रहे, महाप्रभु डिडंट वेस्टेड हिज टाइम, सिंपली रन टू अलारनाथ जहां भगवान के दर्शन हो रहे हैं, समझ रहे बात। तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड वेरी वो कि भगवान बीमार पड़ गए हैं, भगवान के बीमार पड़ना भी जो है इट्स अ प्लेजर पास टाइम एक्चुअली। भगवान बीमार पड़े हैं एक तरफ से, पर भगवान 15 दिन के लिए बीमार, जब आदमी बीमार होता है, जब हस्बैंड बीमार होता है, तो वो किसके साथ होता है, वाइफ के साथ होता है, ऑफिस के बॉस के साथ होता है, नहीं होता, और बाहर के लोगों के साथ होता है, नहीं होता, दैट मीन्स ही इज एंजॉइंग द प्राइवेसी, सो फॉर 15 डेज इज एंजॉइंग द कंपनी ऑफ राधा रानी, इज एंजॉइंग द कंपनी ऑफ लक्ष्मी देवी, सो दैट इज मोर कॉज ऑफ सेलिब्रेशन। बीमारी के बहाने जो है, अगर वो बीमारी भगवान को और राधा रानी को क्लोज लाता है, तो भगवान 365 दिन ऐसे बीमार रहना चाहेंगे, और भगवान करते हैं ऐसे, ऐसे कई लीलाएं हैं जो आती हैं कि भगवान बीमार पड़ गए, और भगवान बिल्कुल, भगवान का ऐसी लीला है कि भगवान दम तोड़ने वाले हैं, और बता रहे सिर्फ एक ही जो है पूरे व्रज में एक ही कन्या जो है उनकी जान बचा सकती है ना, सो वी नो दी सो मेनी पास्ट टेंस, इट्स लाइक दैट, हाँ सर। तो और या इवन उल्टा है कि राधा रानी को जो है सांप ने काट लिया है ना, एंड भगवान तो से नहीं, लाइक राधा रानी इज इन दैट सेंस डाइंग, सो राधा रानी विल डाई टू लिव फॉर दैट, अगर उसको इससे भगवान के क्लोज आ रहे हैं, तो दिस इज समथिंग ऑन ए वेरी कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ये भौतिक, जैसी भौतिक कैलकुलेशन लाएंगे इसलिए खराब हो जाता है, हम जैसे बीमार होते तो क्या हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ है ना, क्योंकि बीमार होने का मतलब क्या है, हमारा इंद्र भोग बंद हो जाता है बेसिकली, ये बीमार होने का मतलब है ना, आदमी नाच कूद सकता है ना, वो खा पी सकता है, इंद्र तृप्ति कर नहीं सकता बेचारा, तो पर यही बीमारी जो है भगवान के लिए ग्रेटेस्ट ऑकेशन ऑफ सेलिब्रेशन बनी होती है। देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देने में कोई हर्ज नहीं है, मान लीजिए कि हमारा कैलकुलेशन गलत निकला है, तो देयरफॉर वी गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, हम ना करें, वी शुड नो फॉर आवरसेल्फ कि हमारा क्या है, बस कहते सो फॉर अदर्स आर कंसर्न। बट हाँ ये भी जरूर है, अगर आप किसी सेवा है, अगर दैट काइंड ऑफ थिंग इज क्रिएटिंग ए पब्लिक न्यूसेंस, देन हो सकता है आपको क्या करें डिवेशनल, और आप उस स्थिति में है, जैसे मान लीजिए ये मंदिर प्रांगण है, कोई अचानक जो यहाँ पे आके उछल कूदने लग जाए, कपड़े फाड़ने लग जाए, लौटने लग जाए, ठीक है ना, तो अगर और अगर आप टेंपल कमांडर हैं तो आपका काम क्या होगा उस वक्त, उनको श्रद्धा पूर्व जो यहाँ से बाहर बिठा दें और डॉक्टर बुलाए उनके लिए, हम समझ रहे बात को, सो इट इज लाइक दैट, इज गेटिंग पब्लिक न्यू सेंस लाइक दैट, सो अदरवाइज इट इज एक्सपेक्टेड कि लाइक जब तक हमारा ऐसा नहीं है तो शुड गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। Therefore you have to know the art of bending without breaking, it's an art, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे कोई ऐसा कर रहा है, कोई मान लीजिए किसी का अपने भाव है, खड़ा हो गया बीच में आके, और आपने गर्दन पकड़ के ऐसे खींच दिया उसको, doesn't work like that, you have to know how to deal with people, then you don't know how to deal with people, you're not mature, see, किसी की मैच्योरिटी का जवाब अपनी मैच्योरिटी से नहीं दे सकते, तो अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो यू हैव टू नो, यू हैव टू बी मोर वेरी पेशेंट. डीलिंग विद डिवोटीज इज नॉट लाइक दैट डीलिंग विद आउटसाइड पीपल. इसलिए जैसे हम लोग यहाँ पर मंदिर में सेवा होती है तो वी से डिवोटी केयर, इट इज नॉट क्राउड कंट्रोल. सो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भगवान यूजुअली, अब देखिए ये भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, आदमी नहाता कैसे है, आदमी नहाता किस परिस्थिति में नहाता है, प्राइवेसी में नहाता है, और यहाँ भगवान पब्लिकली नहाते हैं. अभिषेक का मतलब क्या है, अभिषेक पब्लिक होता है, अभिषेक इज पब्लिक. अभिषेक का मतलब ही बेसिकली यही है कि दैट्स अ सेलिब्रेशन, वहां पर चरणामृत मिलेगा भगवान का जो है. अभिषेक हमने सिर्फ स्नान पानी नहीं डाला जाता, पुष्प वर्षा होगी, अलग अलग चीजें होंगी ना, लेकिन बेथ विथ ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बेथ विथ ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो इसका मतलब वहां पे ये नहीं है कि भगवान इज कमिंग आउट एंड यू नो लाइक इज इन इन आवर सेंस लाइक दैट्स लाइक न्यूडिटी, बट इट्स नॉट लाइक द सेम हियर भगवान के केस में. भगवान को जब स्नान करा रहे हैं दैट इज यूजली अभिषेक कब किया जाता है, सेलिब्रेटिंग विक्ट्री. तो भगवान जो है यूजुअली, मतलब भगवान का एक नाम जय भी है, तो ही इज विक्ट्री पर्सनिफाइड, देयरफॉर उनका अभिषेक जो है इस तरीके से किया जा सकता है. और हम लोग ऐसे नहीं है तो इसलिए हमारा अभिषेक पब्लिक नहीं होता. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जी. नो नो नो, ही इज नॉट, दैट इज श्रीधर स्वामी, is a different personality. I am not aware of, because he is not Kolavacha Shridhar also. So there are many Shridhar, right? Naam jo hai, theek hai, samne pe samapt karenge. Aap sabko bahut bahut dhanyawad. Granthashi Chaitanya Chaitamrita ke Jagat Guru Srila Prabhupada ke upasthit Bhakta Vrind ke and Koti Vaishnava Vrind ke Jai Gaur Sanatana Manande Shridhar ki jai ho. Yeah.